ओम शांति। आज की वाणी है साक्षात्कार की। हेडिंग दिया है भारत है निराकार बाप की जन्मभूमि। यहाँ ही बाप आते हैं, तुम बच्चों की सेवा करने के लिए और तुम्हें राजयोग सिखला कर राजाई देने के लिए। ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर के राज्य भाग देते हैं। उनके पास आए हैं और वही कल्प कल्प बच्चों को आकर के राज्य भाग देते हैं। ऐसे नहीं कहा मैं देता हूँ या ये ब्रह्मा देते हैं। बच्चे जानते हैं हम उनके पास आए हैं, मेरे पास आए हैं ऐसे नहीं कहा, इन ब्रह्मा के पास आए हैं ऐसे नहीं कहा। क्यों? थर्ड पर्सन क्यों कर दिया? क्योंकि जिस समय वाणी बोली जा रही थी ब्रह्मा के मुख से, तो ब्रह्मा दादा लेखराज के तन से जो पाठ चल रहा था वो माँ का पाठ था, बाप का पाठ नहीं था, परमात्मा पाठ नहीं था। तो बोलने वाली आत्मा भले सुप्रीम सोल शिव की थी, परमात्मा पाठ न बजाने के कारण ये थर्ड पर्सन में ये सब बोले हैं। उनके पास वो ही आदि आदि भारत में ही बाप आते हैं। ये भारत भूमि है, अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। तो सब कोई अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। दूसरे देशों को क्यों नहीं कहा जाता? खास भारत में क्या खासियत हुई? वो भारत में ही आकर के भगवान जन्म लेते हैं। प्योरिटी ही खासियत है यहाँ की भारत माताओं की। यहाँ डाइवोर्स की परंपरा नहीं पनपती। ये तो अभी लास्ट वर्ष में आकर के विदेशियों के प्रभाव से प्रभावित हो गई सारी दुनिया, तो अभी डाइवोर्स के केसेस भी अंतिम जन्म में बढ़ते जा रहे हैं। जब भारत में भी ऐसा अधर्म होता है तब भारत में भगवान आते हैं, फिर से भारत को अभिविचारी बनाने के लिए। ये भी जानते हो जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। कौन? मुसलमान लोग भी जब हज करने जाते हैं तो संगे असवद नाम का गोल काला पत्थर मोहम्मद ने ला करके रखा था। वो काबा की दीवार में लगा हुआ है, वो उसको सिजदा करते हैं, चुंबन करते हैं। जब तक चुंबन न करें उनकी हज की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो ये भी तो लिंग की पूजा हुई ना, क्योंकि लिंगाकार गोल काला पत्थर भी था। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनके सामने वो चाहिए ना। लिंग को तो सब तरफ पूजते, चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग ही दिखाते हैं। पुराने पुराने शिव के मंदिरों में जाके देखें, बीच में शिवलिंग रखा होगा, आसपास सारे ही देवताओं की मूर्तियां रखी होंगी। तो वह है सबसे ऊंच। कौन वह? हमारा कौन? यह ब्रह्मा नहीं कहा, मैं ऐसे नहीं कहा, क्योंकि उस तन में, ब्रह्मा के तन में जब शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आया माँ के रूप में, तो माँ साकारी होती है। निराकारी लिंग रूप नहीं कहेंगे, बीज रूप स्टेज वाला नहीं कहेंगे। इसलिए बोला वह है सबसे ऊंच। कौन वह? जो निराकारी लिंग रूप स्टेज वाला है। लिंग रूप स्टेज क्या साबित करती है? जैसे नाक आंख कान ये इंद्रियां है ही नहीं, कान होते हुए भी अपनी ग्लानि नहीं सुनते, तो कान होना न होना क्या हुआ? बराबर हो गया। तो वो सबसे ऊंचे है निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर। उनको अपना शरीर नहीं है। सबसे ऊंचे है क्या? परम धाम में ऊंच और नीच होता है? ऊंच और नीच की बात कहाँ की है? साकार सृष्टि की बात है या निराकारी परमधाम की बात है? उनको अपना शरीर नहीं है इसलिए निराकार कहा जाता है। साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम कहा जाता है सन्मुख वालों से, विमुख होने वाले से तो नहीं कहा जाता। उनके सामने तुम कल्प कल्प हाजिर होते हो शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाक्य है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट्स को राजयोग सिखलाया था, राजयोग सीख कर फिर वह राजा रानी बने थे। कहां? अगले जन्म में। उनको डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाई जाए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाई जाए और कहा जाए अगले जन्म में इंजीनियर डॉक्टर बन जाना, तो कोई पढ़ेगा? तो ये भी गॉडली यूनिवर्सिटी है, इसमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई जाती है ही इसलिए इसी जन्म में हमको इस जन्म की भी राजाई चाहिए और जन्म जन्मांतर की भी राजाई चाहिए, क्योंकि इस जन्म में ही राजाई के संस्कार भरे जाते हैं। लड़ाई आदि की यहाँ कोई बात नहीं है, लड़ाई की अगर बात है भी तो अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, विकार हैं, उन विकृतियों से लड़ाई की बात है, उन कमजोरियों से लड़ने की बात है। इन लक्ष्मीनारायण आदि ने लड़ाई थोड़े ही की, फिर भी बादशाही पाई, तो स्थूल लड़ाई की बात नहीं है। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि उन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया, कोई हिंसक युद्ध करके उन्होंने राज्य नहीं पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं, किसी प्रकार विमुख होने की बात नहीं है। वही हमारा बाबा है, प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो छोटे बच्चे का नाम है, पूर्व जन्म में दादा लेखराज नाम था, बूढ़े ब्रह्मा का तो प्रश्न रचना है, उसको जन्म देने वाला कोई जरूर रचयिता बाप हुआ होगा, जिसने कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चे की रचना की, राजयोग से जन्म दिया, भोग बल से उसका जन्म नहीं होता। सत्य रूपी वृक्ष का वो कृष्ण पहला बच्चा होता है, जिसे पहला पत्ता कहा जाता है, तो वो रचना है। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, पद यहाँ ले रहे हैं, फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। तो ये है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, क्या कहा है? हमको शब्द विशेष क्यों लगाया? माने कृष्ण और कृष्ण जैसे बच्चों को राजयोग नहीं सिखलाते हैं, वो तो बाजू में बैठ करके सीखने वाले हैं। किनको सिखलाते हैं? जो तुम बच्चे सन्मुख होकर के बैठते हो उन बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, जैसे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं, तो मनुष्य हुए ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं, अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी, नई दुनिया में ही है राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, राजाई तो नई दुनिया में होगी, लेकिन जब राजाई होगी तब तुम सन्मुख बैठे हुए नहीं होगे, और अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं। ये है पारलौकिक बाप। एक ही विचित्र बाप है जिसके लिए तुम गाते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तू ही मेरी माता है और तू ही मेरा पिता है। इस समय तुम जानते हो ये अपना पार्ट बजाते। जो भक्ति मार्ग में गायन करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कैसे माता और पिता तू ही है, तू मन एक, जिसे कहते हैं अव्यक्त बाप दादा, कंबाइंड पार्ट है। उसमें माँ का पार्ट बजाने वाली भी सृष्टि की माता है मौजूद, और वर्षा देने वाला बाप भी मौजूद है। दोनों आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, जिसे भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर का चित्र बनाए दिए है। तो वो एक ही विचित्र बाप है। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो तो लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्म। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्म ऐसा तो कभी सुना नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर के विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा। तो ब्रह्मा और विष्णु भी चाहिए, और शंकर का पार्ट ही ऊपर में थोड़ा सा है। ऊपर में क्यों बताया? ऊपर में है इस सृष्टि पर नहीं है, तो इस सृष्टि पर इतने जास्ती तादाद में चित्र कहाँ से आ गए? चित्र आ गए, मूर्तियां बन गई, तो जरूर यहाँ ही कोई चरित्र करने वाला हुआ होगा ना? तो ऊपर में थोड़ा सा पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? ऊंची स्टेज का पार्ट है, जिसको तीन लोग की पुरियों में, तीन पुरियों में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, शंकरपुरी को सबसे ऊंचे दिखाया है। स्टेज की बात है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब भी कर रहे हैं। ये है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है, तो ये भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वो अलग है। ये भी बाबा ने समझाया है, शंकराचार्य अगर न आता तो भारत में पवित्रता का अंश भी नहीं रहता, भले ऊपर की प्योरिटी सिखाई, लेकिन पवित्रता के प्रति मान तो दिया ना। अगर अगर शंकराचार्य न होते तो भारत बिल्कुल ही जल मरता काम विकार में। ये दूध है सन्यासियों के द्वारा भारत को थमाने की। भारत तो बहुत पवित्र था, सन्यासियों की पवित्रता तो दूरबाज खुशबाज की है, लेकिन भारत जब सतयुग त्रेता में था तो यहाँ देवताओं की पवित्रता तो बहुत ऊंच थी, पर बाद में अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है, कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की नहीं हो सकती, ये तो सब कहानियां बैठ लिखी हैं, इन कहानियों से फायदा कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप हमको बिल्कुल सहज आज के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। याद की दो शर्तें हैं खास, तब विकर्म भस्म होंगे। एक तो निरंतर याद हो, याद में अंतर न पड़ने पाए। जिसकी याद कर रहे हैं उसकी याद में कोई मायावी आकर के वायलोरा न डाल दे, अनिश्चय पैदा न कर दे, हमारी बुद्धि को भटकाए न दे, निरंतर याद बनी रहे। और दूसरी बात, निरंतर याद भी हो और अब व्यभिचारी याद भी हो। निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। टूट टूट के याद आवेगी, तो विकर्म भस्म नहीं होंगे। और ये हो सकता है जास्ती चढ़ जावे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? बात याद करते हैं कि हमको साक्षात्कार हो जाए। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए अथवा हम नर से नारायण बन जाए, नहीं। वहां तो अल्पकाल की प्राप्ति की ख्वाहिश रहती है, सदाकाल का लक्ष्य तो बाप ही आकर के देते हैं। तुमको भी ये आशा नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने, अब बाप ने आकर के तुम्हारी ये आशा जगाई है। गाते भी है मनुष्य देवता की ये करत न लागी वार, तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में तो इतने मनुष्य हैं, क्योंकि यहाँ ढेर धर्म है, ढेर ही धर्म खंड है। सतयुग में तो एक धर्म होगा और एक ही धर्म खंड होगा, भारत खंड। इसलिए थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तुमको आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान मिला है, दुनिया में एक भी नहीं जिनको आत्मा का ज्ञान सत्य हो। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट कैसे निभा हुआ है ये कोई नहीं जानते। یہ اکثر بھی کوئی نے نہیں سنے ہیں. باپ تو ہے گیان کا ساگر, پتی تو پاون نراکار. تم جانتے ہو ہماری آتما اب پرماتما سے پنیاتما, وہ پاپاتما سے پنیاتما بن رہی ہے. سچ میں ہے صاف پنیاتما اور یہاں ہے پاپاتما. ایسے نہیں کہ بہت دان پنیہ کرنے سے دان پنیہ کرنے والوں کو پنیاتما کہا جاتا ہے, نہیں. پنیاتمائیں تو ہوتے ہی ہیں ستیگ میں. یہاں منشی جو کچھ بھی دان پنیہ کرتے ہیں ان کو پنیاتما سمجھ لیتے ہیں. وہاں تو تم کو دان پنیہ کرنے کی درکار ہی نہیں, وہاں غریب کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تم تو وہاں سدیو کے لیے پنیاتما ہی ہو. تم تن من دھن سب بہد کے باپ کے ارتھ دے دیتے ہو, جن کو بلیہار جانا کہا جاتا ہے, بلی چڑھنا کہا جاتا ہے. باپ کہتے ہیں پہلے میں بلیہار جاتا ہوں. کون سے باپ کہتے ہیں؟ پہلے میں بلیہار جاتا ہوں. کیسے؟ تن من اور دھن بھید کے تو دو باپ ہیں, آتماؤں کا باپ اور منشیوں کا باپ. تو باپ کہتے ہیں پہلے میں بلیہار جاتا ہوں. میں جاتا ہوں یا تم جاتے ہو؟ پہلے کون جاتا ہے؟ بابا کہتے ہیں پہلے تم بلیہار جاتے ہو, تب پھر تم کو 21 جنموں کے لیے بلیہاری ملے گی. یہ باتیں ابھی تم اچھی ریتی سمجھتے ہو اور تم ابھی ڈائریکٹ سنتے ہو. تم سنتے ہو سنمکھ بیٹھنے والے بچے, یہ سنمکھ نہیں سنتا. تم ڈائریکٹ سنتے ہو, گھر میں رہتے ہو تو وہاں مرلی آتی ہے, دور سے سنتے ہو. ابھی تو باپ کے سنمکھ بیٹھے ہو. باپ کہتے ہیں بچوں میں تمہارا باپ بھی ہوں, اس میں اندھ شردا کی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ باپ کہا ہی اسے جاتا ہے جو جنم دیتا ہے, ورثہ دیتا ہے. تمہارا بےحد کا جنم ہوتا ہے, جیسے شیو جینتی گائی جاتی ہے تو بےحد کے جنم کی بات ہے, دیویہ جنم کی بات ہے. دیویہ جنم روپی پرتکشتا روپی جنم ہے. جیسے بچہ باہر آتا ہے تو پرتکش ہوتا ہے, وہ تو استھول بات ہوئی. یہاں سنسار میں پرماتما باپ پرتکش ہوتے ہیں, تو جیسے جینتی ہوئی ایسے تمہاری آتما بھی سنسار میں اپنے وشیش نام روپ سے پرتکش ہوتی ہے. کہ تمہارا وشیش پارٹ کیا ہے, کون سے دیوتا یا دیوی کا ہے, یا کون سے راکشس کا پارٹ ہے, راکشسی کا پارٹ ہے. ابھی چہرے تیار ہو رہے, ابھی گیان گرب چل رہا ہے. جیسے گرب میں چہرہ تیار ہوتا ہے, شریر تیار ہوتا ہے, بعد میں آتما پرویش کرتی ہے. تو اس میں اندھ شردھا کی بات نہیں ہے. باپ تمہارا باپ, باپ کا بننے سے شکشا دیتے ہیں. باپ تو ہے لیکن وہ ٹیچر بن کر کے وہ بھی ٹیکسٹ بک ہے اس کا ایکسپلینیشن تب دیتے ہیں جب تم باپ کے بن جاتے ہو. تمہاری بدھی میں سارا نالج بیٹھ گیا. 84 کا چکر بھی تم کو سمجھایا جاتا ہے. تم بچے جو سنمکھ بیٹھ کر کے ڈائریکٹ سنتے ہو تم کو سمجھایا جاتا ہے, اور باقی بیسک نالج والوں کو صرف رٹایا سنایا جاتا ہے. جو 84 جنم لینے والے نہیں ہوں گے وہ تو اس 84 کے چکر کو سمجھ نہیں سکیں گے. جس نے 84 جنم پورے لیے ہوں گے وہی سمجھ سکیں گے. تم سمجھتے ہو برابر ہم 84 کا چکر لگا کر اب واپس جاتے ہیں. باپ کہتے ہیں تم ننگے آئے تھے, اب آسری ہو پوتر آتما بن کر کے واپس جاتے ہو. پوتر بننے کے لیے تم پرسارتھ کر رہے ہو, یوگ بل سے ہی تم پوتر بنتے ہو. یوگ اکثر ساتھوں کا ہے, تو رائٹ اکثر کیا ہوا؟ رائٹ اکثر ہے یاد, استری کو پرش کی اتوا پرش کو استری کی یاد رہتی ہے نا, تو یوگ کا ارتھ یہ ہے یاد. باپ بھی کہتے ہیں مام ایکم یاد کرو. اور سنگ بدھی یوگ توڑ مجھے اپنے باپ کے ساتھ بدھی یوگ جوڑو. اور جتنا تم ماں میں کبھی یاد کریں گے اتنا تمہاری وکرم وناش ہوں گے. برابر بھارت کو کلپ کلپ ورسا ملتا ہے. شیو جینتی بھی مشہور ہے, جیسے بدھ سائساد کی جینتی ہے ویسے نراکار شیو کی بھی جینتی ہے. تو وہ ہو گیا اونچ سے اونچ. کون جو نراکاری اسٹیج والا شیو ہے, جو اس سنسار میں پرماتما پارٹ دھاری کے روپ میں باپوں کا باپ کے روپ میں دھرم پتائیں بھی جس کو اپنا باپ سویکار کر لیتے ہیں وہ پرتکشتا روپی جنم لے لیتا ہے. تو وہ اونچ سے اونچ ہو گیا. کرشن ہو گیا مشہور, اس کی جینتی ہے, پرنتو وہ کیا کر کے کرتے ہیں یہ کس کو پتا نہیں. کرشن تو ستیو کا پرنس تھا, ضرور ان کو کوئی نے ایسا کرم سکھایا ہوگا جو ستیوگ کا پرنس بن رہا ہے. چھوٹا بچہ تو پوتر ہی ہوتا ہے, وہاں تو بیکار کی بات ہوتی نہیں, بچہ شدھ رہتا ہے. پرنتو وہ کوئی بھگوان تھوڑی ہے, بھگوان تو ایک ہی نراکار ہے جس کو کہا جاتا ہے گاڈ از ون. باقی ساری رچنا ہے, رچنا سے رچنا کو ورسا نہیں ملتا ہے. ورسا تو باپ رچیتا سے ہی ملتا ہے. تم سب بھائی بھائی ہو. بھائی بھائی من تم سب سالگرام بھائی بھائی ہو. آتم کی اسٹیج میں رہنے والے ایسے نہیں کہ تم بندو آتما ہی ہو, شریر دھاری نہیں ہو. شریر کے سہت ہو لیکن نراکاری اسٹیج میں رہنے والے ہو, اس لیے بھائی بھائی ہو. تو تم ہو سب رچنا. रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता है, बाप से मिलता है। ब्रदरहुड कहते हैं ना, तो बाप तो एक ही है, सर्व भाइयों का सदगति दाता एक बाप है। अभी सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर के पढ़ाता हूँ। क्या कहा? मैं आत्माओं को आकर के पढ़ाता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं उनको नहीं पढ़ाता हूँ? ये बोला है तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखो, तब तक तुम डायरेक्ट बाप से नहीं सीखते। कोई न कोई बीच में गुरु होते हैं जो तुमको सुनाते हैं। जब डायरेक्ट बाप से सीखते हो तब कहा जाता है सर्व भाइयों का सदगति दाता एक बाप। जो बाप आकर के आत्माओं को पढ़ाते हैं, जो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, निराकारी स्टेज में स्थित होने की प्रैक्टिस जिनकी पक्की पड़ जाती है, तो आत्माओं को सदगति देता हूँ। बाप बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है, नई दुनिया में पाना है। वो बैरिस्टर तो इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर के फिर से पढ़ेंगे। तुम जानते हो इस पढ़ाई से तुम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो। वहां सत्युग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं है, तुम वहां तो बीमारी नहीं होती है। वहां तुम गर्भ महल में आराम से रहते हो और यहाँ तो गर्भ जेल है। यहाँ गर्भ जेल में सजाएं मिलती है, सब पुकारते हैं केंद्र से हमको बाहर निकालो, हम फिर से कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तो तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी भी विकर्म नहीं करेंगे, पांच विकार हमने आपको दे दिए। ये भी भेजा बाप जानते हैं पांच विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूट जाएंगे कि तुमने कहा और पांच विकार खलास हो गए। अंदर डर रहना चाहिए कि हम पांच विकारों का दान दे करके फिर लेंगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है, दान दे करके वापस लिया तो चांडाल बना। बाप जानते हैं ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं होता है कि पांच विकार झट छूट जाए, टाइम तो लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था भी होगी और जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। तब तक लड़ाई भी नहीं लगेगी। ये पांच विकार बड़े दुश्मन हैं, उसमें भी मुख्य है ये देहाभिमान। इस देहाभिमान का दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं आपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, परंतु वो होता ही नहीं है। देह अभिमान में आने से फिर काम की चोट लग जाती है। तो ये देह अभिमान सबसे तीखा है, देह का अहंकार। देही अभिमानी बनने की ही मेहनत है मुख्य। मुख्य ये देह अभिमान के आने से ही पाप होते हैं। तो ये पांच विकार दान देना पड़े, इसमें समय लग जाता है। साजन आते हैं तुम सब आत्मा रूपी सजनियों को साथ में ले जाने के लिए, तो आते हैं तो क्या फट से ले जाते हैं? फट से देह अभिमान छूट करके आत्मा नंगी वापस चली जाएगी? ये देह अभिमान त्यागने में टाइम लग जाता है। साथ तो ले ही जाएंगे, छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। परमातीत अवस्था बना करके वापस ले जाएंगे। तब तक पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान आने से फिर भूले होती हैं, और ये तूफान तो बहुत आवेंगे। विकार का संकल्प आए परंतु कर्म इंद्रियों से कब नहीं नगण होना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। बाप कहते हैं भल शादी आदि भी करो, फिर भी पवित्र जरूर रहना है। भल क्या कहा? भल शादी आदि भी करो, शादी करो ऐसे डायरेक्ट नहीं कहा, क्या कहा? भल शादी आदि भी करो। जैसे कोई पूछता है बाबा हमें ये काम करें, तो बाबा कहते हैं अच्छा भल करो। माना बाबा का डायरेक्ट ये डायरेक्शन नहीं है। बाबा तो पहले ही मुरलियों में बता दिया शादी बर्बादी, अब तुम बर्बादी का मुकाबला ही करना चाहते हो तो भल करो। फिर भी बाप पक लगाए देते हैं कि पवित्र जरूर रहना है। रह करके दिखाओ, क्या रहकर दिखाओ? साथ में रह करके पवित्र रह दिखाओ तो सन्यासी भी देखे। सन्यासी भी जानेंगे कि तुमको आमदनी कितनी भारी है। अगर पवित्र रहकर दिखाया तो बहुत ऊंच पद पावेंगे। तुम पर तो करवान जावेंगे, बाबा भी महिमा करते हैं, बल पवित्र भी रहे। परंतु फिर योग भी चाहिए, क्योंकि योग में ही घड़ी घड़ी बिघन पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया का बरसा पाएंगे। परंतु फिर माया भी जोर मारेगी। माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं ये तो सब होगा, बहादुर दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तब ही विकल्प विनाश होंगे। जो रुस्तम बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उन रुस्तमों से अनुभव पूछना होता है। سمجھتے ہیں، کیسے رہتے ہیں یاد میں؟ یاد میں رہنے سے ہی وکل وناش ہوں گے؟ یہ بات بالکل نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہیں تو نشا چڑھا ہوا رہتا ہے، باہر جاتے ہیں تو نشا دھیرے دھیرے رفو چکر ہو جاتا ہے. یہ بھی سمجھتے ہیں بھگوان ایک ہی نراکار ہے نہ کہ کرشن. واسطو میں جو کرشن کے لیے شاستروں میں باتیں لکھ دی ہیں، کھوکھلی سے باندھا، یہ کیا، وہ سب باتیں کوئی ہے نہیں. نہ کوئی اسول اوکھلی کی باتیں ہیں اور نہ کوئی ایسے مکھن چرانے کی باتیں ہیں. یہ تو بے حد کی باتیں ہیں جن کا بے حد میں ارتھ ہے. یہ سب اسول ارتھ کر کے شاستکاروں نے ان کی گلانی کر دی ہے، انسلٹ کرتے ہیں. کشت میں تو کوئی اوگن نہیں ہوتا، چنچلتا کرنا یہ بھی تو ایک اوگن ہے نا. کشت تو بالکل ہی مریادا پرسوتم تھا، ان کی تو مہما گاتے ہیں سروگن سمپن سولہ کلا سمپورن سمپورن ہنس تو مریادا پرسوتم. گایا بھی جاتا ہے گرو برہما گرو وشنو، ان کو بولو گرو تو ہمارا ہے نہیں. کون؟ نہ برہما ہمارا گرو ہے، نہ وشنو ہمارا گرو ہے، نہ شنکر ہمارا گرو ہے. کون گرو ہے؟ گرو تو ہمارا اوپر والا ہے، اوپر والا ہے. پھر اگر اوپر والا ہی ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں سدگرو ملا دلال؟ دلال ساکار سرشتی پر ہوگا، ساکار میں ہوگا یا صرف اوپر والا ہوگا؟ تو شنکر ہمارا گرو نہیں ہے، شنکر کی سول ہمارا گرو نہیں بنتی ہے، لیکن شنکر میں جو شیو ہے وہ ہمارا سدگرو ہے. ہم برہما وشنو شنکر کو نہ گرو نہ ایشور مانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ تو دیوتائیں ہیں، سوکشم وطنواسی. ہم کوئی بھی منشی کی نہیں، کوئی بھی منشی کو نہیں مانتے. پتی تو پاون تو ایک ہی نراکار ہے. ساکار گرو کوئی پتی تو پاون نہیں ہو سکتے. باپ کہتے ہیں ان کا بھی ادھار کرنے میں آتا ہوں. کس کا؟ ان گروؤں کا بھی ادھار کرنے میں آتا ہوں. پتت دنیا میں کوئی پاون ہو ہی نہیں سکتا، اور پاون دنیا میں سب پاون ہی پاون ہیں، یہاں سب پتت ہیں. باپ کو تو جانتے ہی نہیں، کس کی بھی بدھی میں نہیں آتا ہے کہ پرم پتا کوئی بندو روپ ہے. کیسا روپ ہے؟ پرم پتا کس روپ میں ہے؟ بندو روپ میں. بندو دکھائی پڑے گا؟ روپ کیسے دکھائی پڑے گا؟ جو بندو روپ اسٹیج ہوگی وہ تو دکھائی پڑے گی. تو کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ بندو روپ میں کیسے ہے. تم ان کی ساری جیون کہانی کو جانتے ہو. جو بندو روپ ہے ان کی ساری جیون کہانی کو جانتے ہو. تو بندو کی کہانی ہوگی یا بندو جس میں پرویش ہوگا اس کی جیون کہانی ہوگی؟ بایوگرافی کس کی ہوگی؟ صرف بندو کی ہوگی یا بندو کے ساتھ جیون داری کی ہوگی؟ کسی کی بدھی میں نہیں آتا کہ پرم پتا کوئی بندو روپ ہے. تم ان کی ساری جیون کہانی کو جانتے ہو. 5000 वर्ष में शिव बाबा क्या पार्ट बजाते हैं ये तुम अब जान गए, बाप द्वारा जान गए। बाप की जीवन कहानी तुम बाप के द्वारा ही जानते हो, और कोई बता ही नहीं सकता। नारीशूल तो बाप है ना, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, तो ये सब उनकी महिमा है। सागर, सागर किसे कहे? सागर में कोई जान सकता है कितने रतन भरे हुए, कितना कीचड़ भरा हुआ है? न सागर के कीचड़ को कोई नाप सकता और न सागर में भरे हुए रत्नों को कोई जान सकता। हाँ, कोई चाहे तो रत्न निकाल सकता है, न चाहे तो कीचड़ का ही अवगाहन कर सकता है। करना क्या चाहिए, प्राप्ति किससे होगी? जो ज्ञान सागर चैतन्य में सृष्टि पर आया हुआ है, पाठ बजाए रहा है, उसके कीचड़ का अवगाहन करने से प्राप्ति होगी कि कीचड़ में ही फंसे रह जाएंगी बुद्धि? कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। उसको शांति का सागर कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है, आनंद का सागर कहा जाता है। तो ये सब उनकी महिमा है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी खजाना देना होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को तो बच्चों।